उसकी फिर जो हम अपने पिता में दादा परदादा आदि और समझो की अपने पितृकुल के और मातृकुल के जो जितने पितृगण है उनके लिए हम जल देते हैं। उनको जल देने के बाद में दुनिया के बीच के माँ और जितने जो प्राणी रह गए हैं उन सबको यान मात्र प्राणियों के लिए हम जल देते हैं। माने अपने कोई भी संसार के माँ समझो कीट पतंग आदि पशु पक्षी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं छूटता, सबके लिए जल दिया जाता है। ये कहा जा कि आज हमारे पिता का श्राद्ध है, पिता के लिए तर्पण करना चाहिए, किंतु सब उनको पहले तर्पण करके फिर उनको क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे जो पुरुष के माँ जितने पिता मैं आदि हुए हैं वे एक प्रकार से थी देवता और भगवान और अतिथि सबको देख करके ही आपने भोजन किया करते थे। इस वास्ते उनकी जो मर्यादा है उनका चिंतन है वो एक तरह आता है और वो ही एक प्रकार से उनके लिए उत्तम है। सब को देख करके जो बचा हुआ जो अन्न है बचा हुआ जो जल है वो अमृत के तुल्य है। इसलिए अच्छे जो पुरुष होते हैं वो सारी दुनिया को तृप्त करके ही समझो कि आप ऐसो तृप्त होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार से सबको देख करके ही देश में बचा हुआ जो है वो ही मुक्ति के देने वाला होता है। तो हमारे तर्पण के अंदर भी ख्याल करके देखो कि हम सबको इस प्रकार से अपने जल देते हैं। इसी प्रकार से थी समझो कि बलि विश्व देव नाम का जग है उसके बीच के माँ यही बात है कि उसका नाम अपने बलि विश्व है। बलि विश्व का मतलब है कि सारे विश्व को बलि देना और वो बचा हुआ जो अन्न उसको भोजन करना वो ही अमृत के समान बतलाया गया है। सारे विश्व को जल रोज देना सारे विश्व को अन्न रोज देना तो कितने एक प्रकार से इसमें आपने सेवा भाव कितना इसमें सेवा भाव भरा हुआ है। हम लोग जब एक प्रकार से समझो कि बलि विश्व करते हैं तो आरंभ के बीच के माँ परमात्मा को ब्रह्मा जी देवताओं को समझो की आहुति आपने देते हैं। अग्नि के बीच के माँ अग्नि में आहुति देकर करके और फिर भूमि के ऊपर जिस आहुति देते हैं जिस के बीच के माँ समझो की सब ऋषि या पितर या देवता या प्राणी या कीट पतंग हमारे पितृ लोग भी उसके बाद शामिल हो जाते हैं। सब यान मात्र को सबको एक प्रकार से ये आहुति दी जाती है। प्रथम समझो कि अपने परमात्मा को ओम ब्रह्म ने स्वाहा इदं ब्रह्म ने नैम में उसके बाद ब्रह्मा जी को ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नैम में और प्रत्येक के साथ के वहां निष्काम का भाव लगाया हुआ ये आहुति मैं उस ब्रह्म परमात्मा के लिए देता हूँ जिसका फल मैं नहीं चाहता ये मेरे लिए नहीं ये आहुति मैं ब्रह्मा जी को देता हूँ ये इसका फल मैं नहीं चाहता ये मेरे लिए नहीं। नैम में सब के साथ में लगा हुआ है नैमान नहीं मैम माने मेरे लिए नहीं। इस प्रकार का त्याग उस प्रत्येक क्रिया के साथ है। तो ये समझना चाहिए कितनी उदारता उसके माँ भरी कितना निष्काम भाव भरा हुआ है। तो इस प्रकार से अपने कर्म करने से वो जो अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य के द्वारा फिर मेघ होकर के वर्षा होती है और उस वर्षा से सारी दुनिया के माँ अन्न पैदा होता है और उस अन्न से सारे जीव तृप्त होते हैं। उस अन्न से और उस जल से बिना अन्न और बिना जल के कोई भी प्राणी कोई भी जीव आपने जी नहीं सकता। तो वो एक प्रकार से थी हमारा दिया हुआ जो आपने समझो कि जो जल है हमारा दिया हुआ जो अन्न है वो एक प्रकार से थी सूर्य को प्राप्त होकर के सारी दुनिया में फैल जाता है अग्नि को प्राप्त होकर के सारी दुनिया में फैल जाता है। हम वो जो बलि का जो भोजन है वो एक प्रकार से थी हम गऊ को देते हैं जिससे लोगों के पेट में जाने से लोगों के द्वारा सबकी तृप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से समझो कि हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे हम एक नित्य हवन करते हैं तो उस नित्य हवन के बीच के वहां भी जो आहुतियां दी जाती है वो आहुतियां भी इसी प्रकार से थी सूर्य को प्राप्त होकर के सूर्य के द्वारा सारी दुनिया के बीच में वो फैल जाती है। हम जो सूर्य देव को अर्घ देते हैं वो हमारा दिया हुआ अर्घ जो है सूर्य की रश्मियों के द्वारा एक प्रकार से थी सूर्य भगवान उसको ग्रहण करते हैं और सूर्य के को प्राप्त होकर के और फिर वो एक प्रकार से जो जल है मेघ के रूप में आकर के सारी दुनिया में फैल जाता है जिससे सबकी तृप्ति हो जाती है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि सबकी तृप्ति तो सदा से होती आई है होगी भी, हम नहीं भी दे रही है तो सारी दुनिया की तो तृप्ति होगी किंतु वो तृप्ति हमारे द्वारा नहीं मानी जाएगी, वो तृप्ति हमारे द्वारा नहीं मानी जाएगी इसलिए हमको उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमको अपना फर्ज जो है अदा करना चाहिए, हम अपनी ड्यूटी को पालेंगे तो हमारा कल्याण होगा और नहीं तो हम इस संसार में जन्म से मरते रहेंगे और जो इस संसार में अपने कर्तव्य का पालन करके यहाँ से विदा होंगे वही परमात्मा को प्राप्त होंगे, उनका ही कल्याण होगा क्योंकि सबका हमारे ऊपर ऋण है, परस्पर में एक दूसरे का काम एक दूसरे की सहायता से चलता है इसलिए हम सारे संसार के ऋणी हैं, इसलिए सब संसार का प्रतिउपकार करके उस ऋण से बिना मुक्त हुए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ख्याल करना चाहिए जैसे कोई भी एक पुरुष संसार के जिसके मां जो है अपने ऋण से मुक्त होना चाहता है तो तभी मुक्त हो सकता है कि उसका रुपया चुका के किसी धनी का रुपया देना है तो वो बिना दिए एक प्रकार से मुक्त नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं देगा तो दूसरे जन्म में उसको इसी रूप में देना होगा और जब तक नहीं देगा तब तक वो ऋण ही देगा। इस वास्ते हमको सारी संसार से ऋण से मुक्त होना है तो वो बदला चुकाने से ही हम मुक्त हो सकते हैं, इसलिए सबका बदला चुकाने के लिए ही ये साधन बताए हैं यज्ञ के नाम से। गीता के जिसके मां परमात्मा की प्राप्ति के जो बहुत से उपाय बताए हैं उनका आशय खास करके यही है कि सारी दुनिया से मुक्त हो जाना, तो इसके लिए ये मार्ग भी बड़ा उत्तम मार्ग है। दूसरा जो मार्ग है समझो कि भक्ति का मार्ग है, उस भक्ति के मार्ग से भी हम संसार से मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं तदानि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति, जो प्रीति पूर्वक उसको नित्य निरंतर जो भजता है उस पुरुष को मैं वह ज्ञान देता हूँ कि जिस ज्ञान के द्वारा वह पुरुष मुझको प्राप्त हो जाता है। और सत्संग से भी ज्ञान होता है, महापुरुषों की कृपा से भी ज्ञान होता है, ये बात भी भगवान ने गीता में बतलाई। ये मैं जो श्लोक बदला चुका ये दसवीं अध्याय का दस का श्लोक था, अब जो बदलाता हूँ ये चौथी अध्याय का चौतीस का श्लोक है कि सद्विद्धि प्रणिपाते ने परिपत्ने ने सेविया उपदेश ज्ञान ज्ञानी ने सतदर्शी ने, अर्जुन वे जो ज्ञान जिससे समझो कि जीव मुक्त हो जाता है वे ज्ञान जो है तो तू जाकर के ज्ञानी जो पुरुष है सप्तदर्शी उनसे ये ज्ञान तू जान, इस प्रकार से थी कि उनकी सेवा करके उनको नमस्कार कर करके और उनके साथ में वार्तालाप करके और ये ज्ञानी जो है तो तुम्हारे को ज्ञान का उपदेश दे रही, उस ज्ञान से क्या होगा तो कहते हैं कि यज्ञात्मा में पुनर्मोह है एवं यज्ञ पांडव है ये न भूतान शेषे न दृष्टि आत्मनि अतो हुई, उसे ज्ञान को पाकर के इस वर्ष में तू जो मोहित हो रहा है तू जो माया के मोह के बीच के मां इस बात को नहीं समझ रहा है कि जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है और यह संसार क्या है, इससे मेरा क्या संबंध है, इससे बिल्कुल तू अनभिज्ञ है, इसे को एक प्रकार से इस प्रकार इस मोह को फिर कभी नहीं प्राप्त होगा। उस ज्ञान के द्वारा सारे ब्रह्मांड के बीच के मां तू आत्मा का अनुभव करेगा कि वास्तव के बीच के मां आत्मा एक ही है। उसके बाद के बीच के मां परमात्मा का तुम्हारे को यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और उस ज्ञान से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने का ये भी एक उपाय है क्या, कि एक प्रकार से महात्माओं की शरण जाकर के और उनकी सेवा करके के और उनके साथ में वार्तालाप करके के और उनको नमस्कार करके उस ज्ञान को जानना, ये भगवान ने बताया। इसी प्रकार से समझो कि ये महात्मा पुरुष जो बात कहते हैं, शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है, ये जो गीता जी है तो भगवान के वचन है और समझो कि ऋषियों के जितने जो शास्त्र ऋषियों के वचन है, ये जैसे ब्रह्मा जी के वचन है, इनमें जो बातें कही है शास्त्रों के माँ उन पर जो आदमी विश्वास करता है तो उससे भी मुक्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर समेत इंद्रिय ज्ञान लब्धवा परम शांति मचरणादि गच्छति। श्रद्धावान जो पुरुष है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जैसा श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है कि जो एक प्रकार साधन के परायण है, कैसा श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होता है कि जिसके इंद्रियां मन और ये सब भस्म हो चुके हैं, ऐसा श्रद्धावान पुरुष जो है तो ज्ञान को प्राप्त होता है। और ज्ञान को पाने से जो परम शांति है जिसको परमात्मा की प्राप्ति कही जाती है उसको शीघ्र ही पा लेता है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि श्रद्धा से भी परमात्मा उनके तत्व का ज्ञान होकर के इसको मुक्ति मिल जाती है। किंतु ये बात समझनी चाहिए कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान की प्राप्ति निष्काम कर्म से भी हो सकती है, ज्ञान योग के साधन से भी हो सकती है, महापुरुषों के संग से भी हो सकती है, श्रद्धा से भी हो सकती है और ईश्वर की भक्ति से भी हो सकती है। तो ईश्वर की भक्ति का जो साधन है वो बहुत उच्च कोटि का साधन है। तो हम ईश्वर की भक्ति करें तो ईश्वर की कृपा से थी वो हमको अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान के साधन से भी हो सकती है। ज्ञान के साधन से बताया है कि नानिन गुणे व्य कर्तारण यदा दृष्टा अनुपच्यति गुणे व्यस्य परम वेती और मद भावं शोधी गच्छति। जिस काल के बीच के माँ ये साधक पुरुष दृष्टा होकर के और गुणों से अपने को अन देखता है और जो कुछ संसार में क्रिया हो रही है, कर्म हो रहे हैं, ये सब चेष्टा मात्र को ये समझता है कि गुणी गुणों में बलते हैं, गुण से अन कोई करता नहीं है। भगवान कहते हैं इसके फर्श रूप में वो मेरे भाव को यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणी गुणों में कैसे बरतते हैं कि जैसे 17 जो गुण है उन्हीं का ये सारा कार्य है। मन इंद्रियां, बुद्धि आदि ये जितने जो पदार्थ आप देख रहे हो, जितने जो 24 जो शास्त्रों में बताए गए हैं, गीता की समझो की 13वें अध्याय के 5 के श्लोक के बीच के मां की महाभूतानी अहंकारो बुद्धि विरक्त निवृत्त इंद्रिया दशे पंच इंद्रिय गोचरा। 5 तो महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और 5 जो है आपने विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन और बुद्धि अहंकार और ये 10 इंद्रियां इस प्रकार से थी। ये 23 पदार्थ और 24 पदार्थ अव्यर्थ, ये 24 पदार्थ जो है जो माया का ही विस्तार है। तो इस वास्ते ये समझना चाहिए ये सब जो कुछ माया का विस्तार है, ये गुणों का ही विस्तार है। 17 जो गुण है उनकी जो साम्यावस्था है वो प्रकृति है, माया है। और वो जब तीनों गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं तब संसार का स्वरूप ऐसा प्रकट हो जाता है। इस वास्ते ये बताया कि एक प्रकार से तब तक भी तुम हावा हो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणे तु वर्तंत की मतवा नष्ट। ये बात भगवान ने गीता की संजु की तीसरे अध्याय के 28 के श्लोक में बताई कि अर्जुन जिस समय में ये ऐसा हो जाता है, बताया कि सत्रियता जो पुरुष है गुण और कर्म के विभाग के जानने वाले ऐसे जो सत्रियता जो पुरुष है वे कैसा समझते हैं कि गुण ही गुण में बढ़ते हैं, माने संसार के जितने जो पदार्थ है सब गुण ही है, इंद्रियां है मन बुद्धि ये एक प्रकार से अपने कार्य में बढ़ते हैं, इसी का कहना है कि गुण ही गुण में बढ़ते हैं। जैसे इंद्रियां जो अपने अर्थों में बढ़ते हैं उसका नाम गुण ही गुण में बर्तन है, इंद्रिया इंद्रियार्थेषु बर्तंत इति धार्यम। जो महात्मा जो पुरुष है वे क्या समझते हैं कि इंद्रियां ही अपने अर्थों में बरत रही है, मैं न देखता हूँ न सुनता हूँ मैं कुछ भी नहीं करता, नेत्र इंद्री रूप को देखती है, कर्ण इंद्री शब्द को सुनती है, इसी प्रकार से सारी इंद्रियां अपने विषयों में बिखर रही है और आत्मा इससे अलग है, आत्मा का इससे किसी से कोई संबंध नहीं है, सारे जो इंद्रिय है मन बुद्धि ये भी सब एक प्रकार से गुणों का एक कार्य है और ये जितने जो विषय है ये भी गुणों का एक कार्य है, इसलिए इंद्रियां और मन ये अपने विषयों में विचरण करते हैं, आत्मा का इनके साथ में कोई भी संबंध नहीं। इसी तत्व को भगवान ने गीता की 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया कि नाने गुणे वे कर्ता यदा दृष्टा में पश्यति गुणे वैसे परम वेती मद भावन शोधि गच्छति। जिस समय के मां ये मनुष्य दृष्टा होकर के साक्षी होकर के ऐसा अनुभव करता है कि गुणों से अन कोई करता नहीं है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं और आत्मा इससे अलग है, आत्मा तीनों गुणों से अलग है, इस वास्ते आत्मा गुणातीत है, आत्मा तीनों शरीरों से अलग है, आत्मा तीनों अवस्था से अलग है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था से आत्मा रहित है अलग है और तीनों शरीरों से आत्मा रहित है, शुद्ध सूक्ष्म और कारण और आत्मा जो है तीनों गुणों से रहित है, समझो कि सत रज और तम, इस वास्ते आत्मा इस संसार से अतीत है, प्रकृति और प्रकृति का जो कार्य रूपी संसार है और जितने ये समझो कि शरीर है इन सब से आत्मा अलग है, आत्मा दृष्टा है साक्षी है चेतन है, जो चीज जानने में आवे समझ में आवे वो है तो ये है वो है तो दृश्य है और उसके जानने वाला जो है वो दृष्टा है वो चेतन है वो आत्मा है। तो इस प्रकार से भी जो आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है इसी का नाम है तो ज्ञान है कि शरीर और अपने शरीर यानी क्षेत्र और क्षेत्र शरीर का नाम क्षेत्र है और आत्मा का नाम क्षेत्र है, जो क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही वास्तु के बीच के वहां ज्ञान है। यह बात भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कही है, क्षेत्र चापी मांग विद्धि सर्व क्षेत्र सुवार्त है क्षेत्र क्षेत्र के योग्यानंद यत ज्ञान मतन हमें। हे भगवान श्री अर्जुन समझो की सारे शरीरों के बीच के मां जो क्षेत्र जो जीवात्मा है भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप, समझ मेरा अंश होने से मेरा ही स्वरूप है और क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्र माने आत्मा इन दोनों का जो ज्ञान है वो ही मेरे सिद्धांत के बीच के वहां तो ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम से ये भी दूर यांति ते परम। भगवान उसी गीता के 13वें अध्याय के अंत में 34 के श्लोक में कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र मन शरीर और आत्मा का जो एक प्रकार इन दोनों को जो ज्ञान चक्षु से अलग अलग देखता है कि शरीर है तो मिथ्या है नाशवान है और आत्मा चेतन और नित्य और सत्य है, शरीर है तो जड़ है और आत्मा चेतन है, शरीर है तो ये है आत्मा ज्ञाता है, शरीर दृश्य है आत्मा दृष्ट है, इस प्रकार का समझो कि इनका परस्पर में अत्यंत भेद है। इस प्रकार को जब मनुष्य जानता है वो जान कर करके फिर शरीर माने प्रकृति और अपने समझो की प्रकृति का कार्य भूत आदि प्रकृति माने व्याकृत माया मूल कारण ईश्वर की शक्ति और उसका कार्य रूप ये 23 तत्वों का समूह रूप भूतादि इन सब को इन सब का जो है तो अभाव समझता है और आत्मा का ही भाव समझता है तो ये किससे समझता है कि ज्ञान चक्षु से ज्ञान ही वहाँ समझने के वास्ते चक्षु है तो वो फिर परम जो है शुद्ध जो ब्रह्म है परमात्मा है उसको वो प्राप्त हो जाता है तो इससे ये समझना चाहिए कि हरेक प्रकार से ये शास्त्रों में बात बतलाई है कि आत्मा तीनों शरीरों से अतीत है तीनों गुणों से अतीत है ऐसा हम लोगों को समझने के लिए कोशिश करनी थी ये सत्संग से भी ये कार्य सिद्ध हो सकता है और ईश्वर की भक्ति से भी और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से भी और संयोग की ज्ञान के साधन से भी ये इनके जितने उपाय बताए हैं ये दो ही खास उनके जिसके वहाँ अंतर्गत दो उपाय उनके अंतर्गत आ जाते हैं समझो कि एक तो भक्ति का मार्ग एक ज्ञान का मार्ग वो ज्ञान का मार्ग चाहे तुम ज्ञानी महात्माओं से जाकर के सीख लो और चाहे एक प्रकार से निष्काम कर्म करते रहो अंतकरण शुद्ध होकर के अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा या एक प्रकार से ईश्वर की भक्ति करके उस ज्ञान को पा लो या वो जो ज्ञान है उस परमात्मा के वचनों में महात्माओं के वचनों में श्रद्धा कर करके उसको पा लो किन्तु उनके जितने उपाय है ये उपाय दो ही है या ज्ञान को मार्ग या भक्ति को मार्ग तो भक्ति के मार्ग में भी तीनों शरीरों से हमको अतीत होना है और ज्ञान के मार्ग से भी हमको तीनों शरीरों से अतीत होना है तो ये समझना चाहिए कि ये तीनों जो शरीर बताए गए ज्ञान का सिद्धांत तो यह है कि ये जो भी कछु प्रतीत होता है तो माया मात्र है कल्पना मात्र है स्वप्नवत है वास्तव के बीच के मां नहीं है इस प्रकार के ज्ञान से थी उस परमात्मा उनके स्वरूप में इसके नेत्र खुल जाते हैं स्वप्नावस्था के बीच के मां ये जीवात्मा जब ऐसे समझने लगता है कि ये स्वप्न तो नहीं है ये स्वप्न तो नहीं है बस इस शंका होने से थी उसकी आंखें खुल जाती है और वो स्वप्न के संसार को वास्तव में स्वप्न के संसार मान लेता है ये यथार्थ ज्ञान है इसी प्रकार से ये वर्तमान के मां जो ये जो जागृत अवस्था में इस संसार को हम देखते हैं उसको भी हम ऐसा शंका करने लगे कि ये एक प्रकार से स्वप्न तो नहीं है ये स्वप्न तो नहीं है ऐसा स्वप्न देख रहे थे थी उसकी परमात्मा के रूप में उस ब्रह्म के रूप में इसकी जागृति हो जाती है वहाँ एक प्रकार से इसके ज्ञान हो जाता है वहाँ ज्ञान रूपी नेत्र है तो उस ज्ञान रूपी नेत्र के खुल जाने से थी वो क्या देखता है कि एक ब्रह्म को ही वहाँ अनुभव करता है ब्रह्म के सिवा इस संसार का अनुभव नहीं करता जैसे जागने के बाद में और सपने के संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है इसी प्रकार से थी उस परमात्मा के ज्ञान से थी इस संसार का भी अत्यंत अभाव हो जाता है इस संसार के साथ में इसका फिर कोई भी संबंध नहीं रहता इसलिए एक प्रकार से ये भी एक साधन है इस संसार को हम स्वप्नवत समझते हैं दूसरा ये उपाय भी है कोई आदमी सुता हुआ है और उसको स्वप्न आ रहा है और पास में दूसरे बैठे हुए आदमी उसे उनको देखते हैं कि उसके बाहर की चेष्टा देती वो ऐ करता है तो समझते हैं कि इसको कोई बुरा सपन आता है तकलीफ पाता है उसको उठा देता है तो उठा देता है और वो पूछते हैं कि मुझको क्यों उठाया तो कहते हैं कि तुम ये भी एक उपाय है इसलिए ये समझना चाहिए कि एक प्रकार से थी एक सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उसको हम सप्तम ज्ञानोत्तम ब्रह्म कहते हैं उस प्रकार का हम अभ्यास करें तो एक प्रकार से थी हमारी उस शरीर के बीच में उस परमात्मा के शरीर में परमात्मा के स्वरूप में हमारी जागृति हो जाती है हमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि ये वास्तव में संसार नहीं है, ये संसार स्वप्न होता है, माया मात्र है, कल्पना मात्र है। जैसे मरुभूमि में जल दिखता है वो जल नहीं है, बिना होया जल दिखता है, ऐसे संसार बिना हुई दिखती है। यह संसार एक प्रकार से वास्तविक मां है ही नहीं, इस प्रकार से हम इसमें कल्पना करें तो इस प्रकार से करते करते यह संसार मिट जाती है और हम उस परमात्मा के रूप में जाग उठते हैं, तो इस संसार से हम सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा का कैसा स्वरूप है उसकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए कि सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म विज्ञानानंद ब्रह्म। एक विज्ञान आनंद ब्रह्म के स्वरूप दूसरी बात नहीं है, कैसा वह आनंद है कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्यानंद, बोधक स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद। एक आनंद ही आनंद है, आनंद से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है, एक आनंद ही आनंद है। कैसा जो आनंद है कि वो परम आनंद, महान आनंद, अत्यंत आनंद, सम आनंद, अत्यंत आनंद, एक आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से आनंद के माँ तन्मय होने के बाद के माँ फिर ये संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसलिए बताया है गीता की पांचवी अध्याय के सत्रह के श्लोक में तद्बुद्धेश आत्मान सन्निष्ठापरायण गच्छन से पुनरावृत ज्ञान निर्भर के अनुसार। कैसा वो परमात्मा का सूत्र है कि एक प्रकार से सत माने वो सत का मतलब है कि सत्यम ज्ञान ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म। ब्रह्म जो है तो एक आनंद में है, उस आनंद में के स्वभाव कुछ नहीं है। इस प्रकार से पुनः पुनः आवृत्ति करने से पूर्ण आनंद, पार आनंद, शांत आनंद, तो ये हमारा मन इस प्रकार से उस परमात्मा का मनन करते हुए तद्रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर बुद्धि के द्वारा जो हमारा निश्चय है एक ज्ञान धन के बिन और कोई वस्तु नहीं है, उस निश्चय के प्रभाव से वो बुद्धि भी उसके मन विलीन हो जाती है। बुद्धि के विलीन होने के बाद में हमारी जो आत्मा उससे जो भिन्न है वो भी ब्रह्म के मां तद्रूप हो जाती है। तो तद्बुद्ध माने बुद्धि जिसकी तद्रूप हो गई है और तदात्मा ने जिसका मन तद्रूप हो गया है, तद निश्चय उस ब्रह्म के रूप में जिसकी स्थिति हो गई है, तत्परायण उस ब्रह्म के ही ये परायण हो गया है। ऐसा पुरुष उस ब्रह्म को प्राप्त होकर के और फिर पुनः इस संसार के बीच में लौट करके नहीं आता, ये उसी लोक का अर्थ है। इस अर्थ के अनुसार हम साधन करके कि उसमें तन्मय हो जावे तो फिर संसार से हमारा कोई संबंध नहीं रहे, एक ब्रह्म के साथ कोई किसी के साथ संबंध नहीं रहे, उस ब्रह्म की प्राप्ति होकर के हम उसे ब्रह्म के माँ ब्रह्म रूप हो जावे, ब्रह्म ब्रह्म ये भवती ब्रह्म देता ब्रह्म हो जाता है, ये स्थिति हमारी प्राप्त ये स्थिति को प्राप्त हो जाए। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार का जो है सुनिष्पत्ति अभ्यास करना चाहिए। नारायण 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 श्रीवर्ण।